नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 35। हाँ 35। प्रसंग राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। एते सखायः साख्यमे नरा नार्यश्चर्मानद सुप्तायां मयि जाग्रति नागोऽयं पालयन् पुरीम्। एते सखाय साख्य मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जाग्रति नागोऽयं पालयन् पुरीम्। एते सखायः साख्य मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जाग्रति नागोऽयं पालयन् पुरीम्। शब्दानुवाद एते ए सब सखायः पुरुष मित्र सख्यः स्त्री संगीजन मैं मेरे नरः मनुष्य नार्यः स्त्रियां च तथा मानद हे अत्यंत सम्मान्य सुप्तायाम सोते हुए मई मैं हूँ जागृति जगता रहता है नागः सर्प अयम यह पालयन रक्षा करते हुए पुरीम इस नगरी की। अनुवाद हे महाशय ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं मेरे मित्र हैं और यह सांप सदैव जागता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है मैं इतना ही जानती हूँ इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। दोहराइए हे महाशय ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं मेरे मित्र हैं और यह सांप सदैव जागता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। तात्पर्य, पुरंजन ने उस सुंदरी से उन 11 पुरुषों तथा उनकी पत्नियों एवं सर्प के विषय में पूछा। उसने इन सब का संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे अपने इर्द गिर्द के पुरुषों, स्त्रियों तथा सर्प का पूरा पूरा ज्ञान न था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्प जीव के प्राण का प्रतीक है। प्राण तभी भी अद्भुत रहता है जब शरीर तथा इंद्रियां थककर कोई कार्य नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अचेतनावस्था में जब हम सोते रहते हैं तो यह प्राण रूपी सर्प जागृत रहता है। फलतः हम सोते समय स्वप्न देखते हैं। जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो भी प्राण अक्षत रहता है और दूसरे भौतिक शरीर में चला जाता है। इसे देहांतर कहते हैं और इसे ही हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नाम का कोई वस्तु नहीं है। प्राण सदैव आत्मा के संग रहता है और जब आत्मा अपनी तथाकथित निद्रा से उठता है तो वह अपने 11 मित्रों अर्थात इंद्रियां तथा मन एवं उनकी विभिन्न इच्छाओं को पत्नियां देखता है। प्राण तो शाश्वत है। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं रहते हैं तो शाश्वत श्वास चलती ही रहती है और यह सर्प शरीर के भीतर आने वाली वायु को खाकर जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रकट होती है और जब तक श्वास चलती है तब तक सोने वाला व्यक्ति जीवित रहता है। जब यह सारा स्थूल शरीर निद्रा में होता है तो प्राण क्रियाशील रहता है और शरीर की रक्षा करता रहता है। इस प्रकार सर्प सजीव है तथा शरीर को जीवित रखने के लिए वायु का भक्षण करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुर श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखानितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवार्षादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जैसे पिछले कई श्लोकों में हम लोग पुरंजन के बारे में सुने हैं कि पुरंजन ने उस स्त्री से कुछ प्रश्न पूछा था। दो श्लोक में इसका वर्णन हो चुका है। खास करके पिछले 27वें श्लोक में पुरंजन ने कुछ प्रश्न पूछा था। आज के श्लोक में उसका उत्तर है। उस स्त्री ने आज के श्लोक में उसका उत्तर दी है। वो जो स्त्री है वो कौन है, कोई बताएंगे? वो जो स्त्री है वो कौन है? हाँ, बुद्धि है, अशुद्ध बुद्धि है। और बाकी सारे तो सब बहुत आसान है कि जो 11 इंद्रियां हैं वो कौन है? वो बलिष्ठ सेवक है या अंगरक्षक है, मन को लगाकर 11 जो है अंगरक्षक हैं। और जो स्त्रियां हैं वो सेवकों के जो स्त्रियां हैं वो कौन है? इच्छाएं हैं। तो इस प्रकार पुरंजन ने उसे प्रारंभ में उसे पहले पूछा था कि वो सुंदरी तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या, तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। और 27वें श्लोक में उसने पूछा कि तुम्हारे साथ जो 11 अंगरक्षक है वो कौन है और जो 10 सेवक हैं वो ये कौन है और ये जो सर्प आगे आगे चल रहा है ये कौन है और जो सेवक के साथ जो 10 सेवक के साथ जो स्त्रियां हैं वो कौन है। ये 27वें श्लोक में ये प्रश्न पूछा था और आज के श्लोक में इसका उत्तर है। वो पुरंजनी जो बुद्धि है, दूषित बुद्धि यानी स्त्री के रूप में, वो उत्तर देती है कि जो 11 इंद्रियां है या जो पुरुष है या 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां और मन को लगाकर 11 इंद्रियां है जो 11 अंगरक्षक हैं और जो सारे स्त्रियां हैं ये सारे मेरा मित्र हैं। वो पुरंजनी जो बताती हैं ये सारे मेरा मित्र हैं और जो सांप है, सर्प है, ये है, ये सब समय जागता रहता है और यहाँ तक कि सो जाने के बाद भी वो अपना का ये शरीर को, ये पुरु को रक्षा करता है, गार्ड करता है। इससे पहले श्लोक में हमें सुने हैं कि जो सर्प है, सांप के बारे में थोड़ा वर्णन है कि जो सर्प है ये 5 मुख वाला सर्प है, जो प्राण है, सर्प प्राण के प्रतीक है जो सर्प है वो 5 मुख वाला है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु है, जो 5 प्रकार के प्राण वायु है, प्राण प्रमुख है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार के जो वायु है ये शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य करते हैं। जैसे प्राण वायु है वो मस्तिष्क और जो छाती है यहाँ तक तो उसका कार्य क्षेत्र है और इस प्रकार हर, क्योंकि वो एक ही रूप में लिया जाता है, प्राण वायु एक ही रूप में लिया जाता है, वो 5 मुख वाला है। तो ये जो प्राण वायु है शरीर के अंदर विभिन्न जगह में कार्य करता है, प्राण अपान व्यान समान उदान। जो योग प्रोसेस अष्टांग योग प्रक्रिया है, जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इसमें जो प्राणायाम है ये प्राणायाम के माध्यम से योगी इस सारे वायुओं को कंट्रोल करते हैं, माने समझत करते हैं, नियंत्रण करते हैं, अपना जो अंदर के जो अशुद्धि है, अशुद्धियां है उसको शुद्धिकरण करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि रेचक पूरक कुंभक जो है, जैसे हम लोग सांस ले लिए अंदर इसको पूरक बोलते हैं, फिर सांस को जब छोड़ते हैं इसको रेचक बोलते हैं, और लेने का और छोड़ने का बीच में जो हमें जो सांस को अंदर उसको धारण करके रखे अंदर में उसको कुंभक कहा जाता है, इसको अंतर कुंभक कहा जाता है, इनके अंदर में जो धारण करके वायु को रखते हैं। फिर जब सांस को लिए हमने फिर छोड़ दिए, छोड़ने के बाद जो अंदर को वायु नहीं न लेते हैं, जब नहीं लेते रोक देते नाक को और मुख को, तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इस प्रकार जैसे हमें फिर उसका भी अगला स्टेप है, इस प्रकार हमने पूरक मैंने सांस भर लिया अंदर और तुरंत उसको छोड़ते हैं, जोर से छोड़ते हैं, तो उसको कपालभाति कहते हैं, विभिन्न प्रकार नाम से उसको आख्या कर मैंने नामांकित करते हैं। तो इस प्रकार जो योगी होते हैं ये सब शास्त्रिक है, वैदिक शास्त्र में सब उल्लेख है, जो योग शास्त्र है, पातंजलि योग शास्त्र है। तो भगवत गीता में थोड़े बहुत वर्णन है। तो इस प्रकार जो योगी होते हैं इन सारी चीज़ों को नियंत्रण करते हैं, हमारा हृदय में जो अंदर में जो सारे अशुद्धियाँ हैं उसको निकाल देते हैं, और मन को खासकर ये इन सारी चीज़ों का मेन असली उद्देश्य है कि मन को नियंत्रण करना, यानी इंद्रियों को संयत करना, स्थिर करना है, क्योंकि इंद्रियां हमेशा चंचल रहते हैं। जैसे बोला है कि इंद्रियों का जो 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं मुख्यतः, और 11 मन को लगाकर 11 हैं, एक एक इंद्रियों का हजार लाखों इच्छाएँ हैं, तो इसके वजह से इंद्रियाँ हमेशा भागती रहती हैं, इधर उधर चारों दिशाओं में भटकती रहती है, कभी भी मन स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता। तो जब मन स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता, एक बिंदु पर स्थिर नहीं होता, तो फिर हम भगवान में कैसे मन लगा सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम, जो अष्टांग योग प्रक्रिया है, मन को स्थिर करने का यानी नियंत्रण संयत करने का विधि है। अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में हमने जैसे देखे हैं कि पुरंजन, वो जो पुरंजन की जो बाह्य सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ वर्णन करता है, उसको उसकी तारीफ करता है, और पुरंजनी यानी जो स्त्री, वो भी पुरंजन के बारे में बहुत कुछ बोलता है। तो क्यों इस प्रकार एक दूसरे को क्यों इस प्रशंसा स्तुति करते हैं? जब जीवात्मा इंद्रिय सुख भोगने के लिए पागल हो जाता है, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाता है, तो वो अपने अंदर में आध्यात्मिक स्वार्थ नहीं दिखता है। वह जहाँ इंद्रिय तृप्ति के लक्ष्य हासिलात हो सकता है, जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति का सुविधाएँ प्राप्त होगा, जहाँ पर जैसे ना किसी उपाय से इंद्रिय तृप्ति या किसी ना किसी व्यक्ति को प्रशंसा चाहे करने क्यों न पड़े, तो जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति का साधन हासिलात होता है, वहाँ पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि जो प्रशंसा के योग्य नहीं है उसको भी प्रशंसा उसका स्तुति भी करता रहता है। श्रीमद् भागवतम में बहुत एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, सो वीर बरा वस्त्र खरे पुरुष संस्तुत पशु न जत कर्ण पथपे तो जातु नाम गदाग्रज। सो मतलब कुत्ता है, बीड बरा मतलब गांव में रहने वाले जो स्वर है, एक जंगल में एक स्वर रहते हैं जो थोड़ा एक अदर जो चीज़ें खाते नहीं हैं, गंदे चीज़ें नहीं खाते हैं, परंतु यहाँ पर बीड भराव के बारे में बोलते हैं, जो एक अदर चीज बहुत गंदा चीज़ खाते हैं। सो बीड भराव वस्त्र ऊंट और खरई यानी गधा, ये चार जो प्राणी है विशेष जानवर है, प्राणी है, तो इन श्रेणियों के माफी जो व्यक्ति होते हैं, वो उसी प्रकार एक व्यक्ति को अपने प्रभु जैसे मानते हैं, अपना मास्टर चुनते हैं और उसका प्रशंसा करते हैं। कि पहले तो ये इसी प्रकार मनुष्य होते हैं, इन्हीं पशुओं के श्रेणी के मनुष्य होते हैं, और वो भी अपने एक नायक चुनते हैं, लीडर चुनते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन सारे प्राणियों का एक ही मात्र उद्देश्य है कि संघर्ष, कठिन श्रम करना और इंद्र तृप्ति करना है। क्योंकि जीवन का जो असली उद्देश्य है नहीं जान पाते हैं। दूसरे लाइन में बताया जाता है कि जातु नाम गदाग्रज न, इसका कान में भगवान के नाम गुण कीर्तन के बारे में कुछ घुसता ही नहीं है। पागल में भी वो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और किसी का भी प्रशंसा कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति का। कुछ दिन पहले हमें एक किसी व्यक्ति से मिलने गए थे, बहुत बड़े व्यक्ति यहाँ पर, तो व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों का तारीफ किया, प्रशंसा किया, प्रभुपाद जी के बारे में बताया, बोले हाँ प्रभुपाद जी भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे हैं, हाँ प्रभुपाद जी ऐसे हैं, प्रभुपाद जी एक महापुरुष थे, और वो व्यक्ति अच्छा, मैं तीन व्यक्तियों को बहुत अच्छा मानता हूँ, एक एक करके उनका नाम बताया, और एक व्यक्ति उनमें से बताया जो संभोग से समाधि, वो व्यक्ति उस प्रकार एक व्यक्ति का नाम बताया। तो यानी लोग जो होते हैं, एक तो वो जानते नहीं है कि वास्तव में क्या किसको किसका प्रशंसा करना चाहिए, वास्तव में प्रशंसनीय कौन है, कौन प्रशंसा के योग्य हैं। हालांकि सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा व्यक्ति है, परंतु उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि वास्तव में कौन है प्रशंसा के योग्य है, यानी भगवान, यानी भगवान के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं वो प्रशंसा के योग्य होते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार, हालांकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो यहाँ तक तो ये भी पता नहीं है कि क्या वास्तव में क्या सही है क्या गलत है, तो किसी को भी किसी भी व्यक्ति को प्रशंसा करता रहा, और वो अपने हिसाब से एक व्यक्ति को चुना, कुछ व्यक्तियों को चुना और उनका प्रशंसा किया, क्योंकि वो प्रामाणिक गुरु के अधीन में नहीं है, वो जो ज्ञान प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान लाभ नहीं किया है वो व्यक्ति, तो इसके वजह से वो व्यक्ति भ्रमित है, भ्रमित जैसा है। और जो भी कभी भी मन में आता है कि हमें वास्तव में जानना चाहिए कौन प्रामाणिक है कौन प्रामाणिक नहीं है, या इन लोगों के बारे में जानेंगे जो प्रामाणिक रूप से कुछ करते हैं, जो भी मन में कोई प्रश्न आता हुआ होगा, परंतु उसका मन में जो घमंड अहंकार है वो उसे आगे बढ़ने नहीं देता, ये ब्रह्म जिज्ञासा सही जानकारी करने के लिए रोकता है अपना अंदर में जो मिथ्या अहंकार है, क्योंकि व्यक्ति मिथ्या अहंकार के कारण, क्यों मिथ्या अहंकार अंदर में है, क्योंकि भोग की वासना मन के अंदर है, हृदय के अंदर भोग की वासना इतना प्रबल है कि वो व्यक्ति इतना प्रबल है भोग की वासना, वो व्यक्ति अच्छा चीज जानने के लिए कभी तैयार नहीं रहता, अपने को नीचे स्तर को कभी लाता ही नहीं, अपने को झुकना नहीं चाहता, अपना सर झुकाना नहीं चाहता प्रामाणिक गुरु के पास। तो इस प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति को हमें गुणगान कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति का तारीफ प्रशंसा कर देते हैं, परंतु वास्तव में प्रशंसनीय कौन है, भगवान है, भगवान ही एकमात्र प्रशंसा के योग्य होते हैं, और जो उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं, उनके दास होते हैं, उनका ही गुणगान या प्रशंसा वो भी प्रशंसनीय है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक बोलते हैं कि हमें पशु स्तर में रहते हैं तो हम भी उसी स्तर में रहने के कारण उसी स्तर के कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका प्रशंसा हम करते रहते हैं। तो इसी प्रकार पुरंजन ने, क्योंकि भोग की वासना है हृदय में है, इंद्र तृप्ति की वासनाएं है, तो पुरंजन ने पुरंजन की प्रशंसा की और पुरंजन ने पुरंजन की प्रशंसा किया। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि जब शरीर के अंदर जब प्राण रहता है तो शरीर हालांकि सोते हुए रहता है तभी भी ये शरीर कार्य करता है, क्रियाशील रहता है। जो प्राण है, अच्छा जो प्राण है ये कौन है, हम साधारणतः जो स्वप्न देखते हैं तो हम बोलते हैं कि जो मन बुद्धि की पंच महाभूत का जो शरीर वो तो पड़ा रहता है, सो जाता है, वो सक्रिय नहीं रहता है, सो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है प्राय। और जो मन बुद्धि अहंकार, हम बोलते हैं कि मन बुद्धि अहंकार के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं, है कि नहीं, जो मन बुद्धि अहंकार है हमें आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं और स्वप्न देखते रहते हैं। तो परंतु यहाँ पर वो पुरंजनी जो बुद्धि के प्रतीक है, दूषित बुद्धि के प्रतीक है, वो बोलती है कि तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी का रक्षा करता है, जब यानी बुद्धि जब भी सो जाती है तब भी वो प्राण जो है वो कार्य करता रहता है, इस पुरी को रक्षा करता है, शरीर को रक्षा करता रहता है। यानी प्राण जो शक्ति, मैं एक भक्त से पूछा प्रभुपाद के शिष्य से, वो बोले कि जो प्राण है वो आत्मा का शक्ति है। जैसे हम जानते हैं कि जो शरीर में जो शरीर जब जीवित रहता है तो जो चेतना है शरीर भर में फैला हुआ रहता है, तो हमें जान पाते हैं कि हाँ जब सांस चलता रहता है तब भी हमें मालूम होता है कि वह व्यक्ति जिंदा है। तो उसी प्रकार जो तब उसी समय भी हमें जब हमें शरीर सो जाता है तो चेतना में भी हमें जान नहीं पाता, हम किसी स्तर में टच करिए हमें कुछ व्यक्ति होते हैं वो समझ नहीं पाते, उनको सेंस उनका नहीं होता कि हाँ कोई हमें टच कर रहा है या बुला रहे हैं। फिर यानी जब सांस प्रश्वास चलता है हम जान पाते हैं ये व्यक्ति जिंदा है। तो इस प्रकार यहाँ बताया जाता है कि जो सांस है, जो वायु हम लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस वायु को खाकर ये प्राण जिंदा रहता है, यहाँ पर बताया जाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो ये प्राण है ये आत्मा का कॉन्स्टेंट कंपेनियन, ये सब समय रहता है। ये जो प्राण है जब ये शरीर को नष्ट कर दिया जाएगा, आगे आगे श्लोकों में हम देखेंगे, जब चंडवेग ने इस शरीर को आग लगा देगा, जब मृत्यु के समय में हमें शरीर में तापमात्रा बहुत बढ़ जाता है, ये शरीर को आग लगा दिया जाता है, फिर तुरंत ठंडी हो जाता है, तो उस समय जो प्राण है प्राणी को अरेस्ट कर दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा, तो उसके कारण आत्मा तड़पते बहुत कष्ट अनुभव करेगा, कष्ट अनुभव करने के कारण वो फिर यहाँ रहना नहीं चाहेगा और यहाँ से वो निकल जाएगा। तो हम जनरली बोलते हैं ना कि मृत्यु के समय में लाखों करोड़ों बिच्छू जैसे काटने से जितना ही पीड़ा होता है उतना ही पीड़ा होता है मृत्यु के समय में। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने वर्णन करते हैं कि जो योग शक्ति है, जो प्राणवायु है, जो प्राण अंदर जाता है तो वो उसको खाकर जब शरीर भी सो जाता है, संपूर्ण भौतिक शरीर सो जाता है, सुप्त अवस्था में रहता है, तभी प्राण सक्रिय रहता, कार्य करता है, शरीर को रक्षा करता है। तो ये प्राणवायु में जैसे आगे बताया है कि ये प्राणवायु को विभिन्न प्रकार चक्रों के माध्यम से इसको योगी लोग होते हैं उसको नियंत्रण करते हैं और अपने हिसाब से एक इसको ऊपर उठाते उठाते उसको प्राण को फिर आत्मा को यहाँ से इस रंध्र से ब्रह्मरंध्र से ऊपर चले जाते हैं, अपने हिसाब से एक लोक में चले जाते हैं। ये बहुत कठिन व्यापार जैसे हैं, इस योग में बहुत ही कठिन है, इस चीज़ों को कर पाना प्राय असंभव जैसा है। बहुत से बड़े बड़े योग सोसाइटी हैं आप देखेंगे दुनिया में, हम जो पिलान में थे तो पिलान के वहाँ मार्केट के पास एक बहुत बड़ा योग सोसाइटी में देखा वहाँ था तो, और बहुत हर जगह में कहीं भी जाएंगे दुनिया में और कहीं भी छोटे छोटे पार्क है या कहीं कुछ फील्ड है, कोई ना हर कोई आदमी दुनिया में योग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने खास करके प्रभुपाद जी की भगवद गीता में और दूसरे दूसरे जगह में योग का शब्द बताते हैं कि योग का मतलब यह है कि अपने चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ना है। परंतु आजकल के आधुनिक सभ्यता में जो योग है वो सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, फिर दोबारा फिर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये सारे योग प्रथा अवलंबन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, यानी देखिए जो वेद हमारे जो सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं ये कल्पवृक्षों की माफी है, हर चीज़ें इसमें उपलब्ध है, जो भी चीज़ चाहेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहेंगे वहाँ ये शास्त्रों में वर्णन है। आध्यात्मिक स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के लिए जाएंगे वहाँ भी वर्णन है, कर्मकांड विभाग है, और फिर अब भगवत धाम जाएंगे उस सारी चीज़ में वर्णन है। ये असली उद्देश्य लोग भूल जाते हैं और ये कर्मकांड और खास करके इसी दुनिया में रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इस सारी चीज़ों को शास्त्रों से लेते हैं और उसको उपयोग करते हैं और उसको नाम देते हैं ये योग सोसाइटी है, क्योंकि असली उद्देश्य भूल जाते हैं, योग का जो असली उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े योग सोसाइटी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, योग देश और विदेश में बहुत बड़े बड़े योग सोसाइटी, जैसे प्रभुपाद जी ने जब विदेश में गए थे, आप जानते हैं मिश्र योग सोसाइटी था, तो वहाँ पर भी दुनिया में हर जगह में योग के बारे में प्रसिद्ध है, हर लोग कोई जानते हैं योग, सिर्फ इतना ही शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखा जाए जो प्राणायाम आसन वगैरह करके, तो फिर दोबारा कैसे हम इंद्रिय तृप्ति कर सकें, इतना हद तक लोग सिखाते हैं। जैसे बहुत से डॉक्टर भी होते हैं वो भी शरीर कैसे ठीक से रखा जाए तो योग सिखाते, वो नहीं बताते कि इसे योग करने के बाद फिर आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो असली उद्देश्य है कि योग के असली उद्देश्य है कि अपने चेतना को भगवान के साथ जोड़ना है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तपस्वी भी अधिक योगी, ज्ञानी भी अपनी मत अधिक, कर्मी भी अपनी अधिक योगी, तस्मात योगी भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तुम एक जो योगी होता है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है और एक सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है, तो हर वक्त तुम जो एक योगी बनो। प्रभुपाद जी ने उस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि जो योग है, योग शब्द का व्याख्या करते हैं कि योग जो है अपने चेतना को परम चेतना भगवान के साथ जोड़ना है, और यहाँ पर जो भगवान ने बताते हैं कि जो योग के बारे में वर्णन किए, ये यहाँ पर ये नहीं वर्णन किए कि जो ये सारे जो विधि हैं ये कर्मयोग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये भक्ति योग से श्रेष्ठ हैं, ये नहीं बताए हैं, क्योंकि भक्ति योग जो होता है वो पूर्ण आत्म साक्षात्कार है, कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन है, इसके आगे और कुछ नहीं है। भक्ति योग जो होता है वो स्वतंत्र होता है, बाकी सारे जो योग होते हैं ये अंत में भक्ति योग तक आते हैं, परंतु भक्ति योग जो होता है वो स्वतंत्र है। जैसे जो योग प्रारंभ होता है कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर ध्यान योग, इस प्रकार योग की जो सीढ़ियाँ होता है एक एक करके हमें योग के सीढ़ी तक स्तर तक पहुँचते हैं, फिर भक्ति योग तक आते हैं, परंतु जो भक्ति योग होता है वो स्वतंत्र है, वो टपमस्ट योग सिस्टम है, तो वहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, ये एक लिफ्ट के बराबर है, एक जैसे एक लिफ्ट में हमें बहुत अल्प क्षण के मध्य में के अंतर अंदर हम चले जाते हैं, अपना गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं। तो उसी प्रकार जो भक्ति योग होता है, भक्ति योग प्रारंभ करते ही सभी प्रकार प्रक्रिया शुरू हो जाता है और सभी प्रकार जो हमारे कलमश नष्ट हो जाता है, अपने स्थिति में हमें पहुँचते हैं। ये भक्ति योग का इस प्रकार महत्व है। तो दूसरे दूसरे जो योग होते हैं यहाँ पर उस परवर्ती श्लोक में भी इसका वर्णना करते हैं, जो योगी नामपि सर्वेशंग मदगतेन अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्तत्वमता। भगवान बोलते हैं कि योगी नामपि सर्वेशंग, योगी नाम योगियों में सर्वेशम यानी समस्त प्रकार के सभी योगियों में, बोलते योगी नाम सर्वेशंग मदगतेन अंतरात्मनां, मदगतेन मेरे परायण या मेरे बारे में हमेशा सोचते हुए, मदगतन अंतरात्मनम अपने अंतकरण में मेरे बारे में हमेशा सोचते हुए, और भजताम प्रीतिपूर्वक भजताम श्रद्धावान भजते जो माम, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। इसी श्लोक के प्रारंभ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भजति शब्द है वो भज धातु से आया है, इसका अर्थ है सेवा करना। और उसी श्लोक के तात्पर्य के अंत में श्री प्रभुपाद जी एक श्लोक वर्णन करते हैं एक उपनिषद से, वो बहुत सुंदर श्लोक है। और उस श्लोक में बहुत पूर्ण रूप से बताया जाता है, क्लियर स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि किस प्रकार जो भजन शब्द है और जो भक्ति है और सेवा करना, ये तीनों एक ही शब्द जैसे हैं, एक ही इसका जो मतलब है एक ही है। बहुत सुंदर श्लोक, भक्तिर अस्य भजनम। यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बोले, जो भज शब्द जब भज धातु से आया है जिसका अर्थ है सेवा करना। और यहाँ पर इसी श्लोक के तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी ने उपनिषद से एक श्लोक कोट करते हैं, बोलते भक्तिर अस्य भजनम, भक्ति का मतलब है भजन। तीनों चीज़ एक ही है। जहाँ पर भी कहीं शास्त्र में खास करके हमारा श्री प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों ने भक्ति शब्द का या सेवा करने का शब्द का आता है तो एक ही मिल प्राय होता है, भगवान की प्रेममयी सेवा, भगवान की दिव्य सेवा। तो इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी इसको वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज ने जो नवदा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो बोलते हैं इसी इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण। जो नौ प्रकार के जो ये विधि है ये भक्ति का अंग है, विधियां है नौ प्रकार के, यानी इसके अंदर में भी सेवा का दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, तो सभी प्रकार है। यानी हर चीज़ें आप शास्त्र में देखेंगे एक एक करके, जो भक्ति का अर्थ आपको एक ही मिलेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, दिव्य भगवान के दिव्य प्रेमामयी सेवा भक्ति का अर्थ। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ये सबसे टॉप मोस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट है, इसके अलावा और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो हमने इस प्रकार हमने देखे कि जो योगी लोग होते हैं तो विभिन्न प्रकार कष्ट उठाते हैं, योग साधना के अष्टांग योग जो करते हैं विभिन्न प्रकार के तरह तरह के कष्ट उठाते हैं। और जैसे तपस्या करते हैं, तपस्वी भगवान श्री कृष्ण जैसे बोले तपस्वीभ्य अपि अधिक योगी, तो तपस्या करते हैं, बहुत कठिन तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने के बाद अगर आत्मसाक्षात्कार उपलब्ध नहीं हो, आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाया व्यक्ति, तो उनका भी श्रम वृथा गया। आत्मा मैं कौन हूँ, परमात्मा भगवान कौन है, वो नहीं जान पाया, कोई कठिन तपस्या करते रहा तो उसका श्रम भी वृथा गया है। और जो ज्ञानी होते हैं तो ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से नेति करते करने के बावजूद भी अगर वो शरणागति अपनाते नहीं, भगवान के पाद पद्म की सेवा को अपनाते नहीं, तो उनका भी श्रम वृथा जाता है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करते हैं कि जय अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिन स्तोयस्त भाव अभिशुद्ध विद्धय पतंति अध अनादृत जुष्मद अंग्रय। जो ज्ञानी लोग होते हैं तो ये अन्य अरविंदाख्य विमुक्त मानिन, तो इस प्रकार ज्ञान को अनुशीलन करते करते वो व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचा हुआ समझते हैं, वो ऊपर उठा हुआ समझते हैं, और वो भगवान के चरण कमल के प्रति अनादर करने के वजह से फिर उसी स्तर से वो नीचे गिर जाते हैं। पतंति अधः अनादृत जुष्मद अंग्र, भगवान के चरण यानी भगवान की सेवा करने का जो विधि है उसको भगवान की सेवा करने के लिए वो नकार कर देते हैं। ना ही भगवान की सेवा क्यों करें, हम भी भगवान जैसे हैं, हम भी भगवान सोहम, आप जैसे हैं मैं भी वैसे हूँ, और वो विभिन्न प्रकार पंथा अपनाते हैं तो अपने को बहुत बड़ा हुआ मानते हैं वो, परंतु वो गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। पतंति अधः अनादृत जुष्मद अंग्र, तो इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं अगर वो जो समर्पण की भावना नहीं होता, भगवान के दासत्व स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर वो नीचे अपने स्तर से गिर जाते हैं। और जहाँ तक सकाम कर्मियों का बात है तो वो सकाम कर्मी जब तक वो भगवत भावना मृत कृष्ण भावना मृत नहीं होते हैं तो वो भी ऐसे क्या होते हैं, उनका भी समय वृथा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीनों स्तर में यानी ज्ञानी हो, योगी हो या सकाम कर्मी हो, कोई भी हो, जब तक व्यक्ति भक्ति योग तक नहीं आता है तब तक वो अधूरा रहता है, उसका पतन होना या उसका जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है वो अधूरा रहता है, पूर्ण आत्म सत्य को नहीं जान पाता है। जो भक्त होता है एकमात्र वो ही हर चीज़ों को ठीक ठीक सही सही ढंग से जान पाता है। श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता में खासकर बहुत सारे जगह में भगवान ने बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति जवान जश्चास्मि तत्त्वतो ततो मांग तत्त्वतो ज्ञान्त्वा विशते तदनंतरम, कि भक्ति सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति जवान जश्चास्मि तत्त्वतो, भगवान जैसे हैं उनको उस तत्त्वतो उनको भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। परंतु लोग आधुनिक सभ्यता में जो लोग होते हैं ये भक्ति शब्द को दुरुपयोग करते हैं। दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, देवादेवी किसी भी देवादेवी के मंदिर में जाते हैं, वो बोलते हैं ये भी भक्ति है, भगवान के भक्ति हैं। ये नहीं जान पाते हैं कि जो भक्ति शब्द है, प्रहलाद महाराज ने बोले कि इति पुंसार्पितो विष्णु, एक पुरुष को एक व्यक्ति को ये जो नवदा भक्ति है श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चन वंदन दास्यम, ये सारे विष्णु को अर्पित किया जाना चाहिए, इसका नाम भक्ति है, ना कि कुछ देवादेवियों को अर्पित करना है। देवादेवियों को जो अर्पित करना है तो श्री प्रफुल्ल प्रभुपाद जी ने जो छठा अध्याय के अंत में तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भजत शब्द का अर्थ व्याख्या करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जो भज धातु से जो भजन आया है, भजन शब्द जो भज धातु से आया है इसका मतलब है सेवा करना। पर इंग्रेजी में जो रिलीजन शब्द है, जो धर्म जो शब्द है रिलीजन, ये है पूजा करने का है मतलब है, तो ये किसी भी आम आदमी को यानी कोई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति या देवादेवियों को पूजा करने का समझाता है। परंतु जो सेवा करना है वो भगवान की सेवा करना है। लोग ये नहीं जानते हैं कि किसी को कुछ भी चीज़ों की कहीं पर व्यवहार कर लेते हैं। और शास्त्र में बताया जाता है अगर कोई व्यक्ति देवियों को या कोई वरिष्ठ व्यक्तियों को निंदा करता है तब भी उसको अशिष्ट कहा जाता है, परंतु कोई व्यक्ति भगवान को निंदा करता है तो उससे नराधम कहता है, वो उनका बहुत अधपतन होता है कि उसको शास्त्र में निंदा किया भर्सना किया जाता है। परंतु लोग ये नहीं समझते हैं कि जो वास्तव में भगवान भक्ति करना है, भगवान के प्रति भक्ति करना है, वो कुछ भी करते वो देवादेवियों को पूजा करते हैं, क्योंकि देवादेवी जो होते हैं भगवान के दास होते हैं, सारे देवादेवियाँ जो होते हैं भगवान के दास होते हैं, और देवादेवियाँ जो सारे चीज़ें प्रदान करते हैं हमें वो भगवान से ही प्राप्त होता है। भगवान जब अनुमति प्रदान करते हैं, जब व्यक्ति देवादेवियों को उपासना करना प्रारंभ करता है तो भगवान उसका हृदय में उस प्रकार जो भावना जो प्रेम को बढ़ा देते हैं निर्दिष्ट देवता के प्रति, वो उपासक का जो भावना है उस देवता के प्रति जो बढ़ा देते हैं भगवान ने, और जिसके कारण वो उस देवता का पूजा करता है, और जो देवता जो वर प्रदान करता है वो भक्तों को अपने भक्तों को वो भी भगवान उसे प्रदान करते हैं। वो देवताएं या कोई भी देवता वो अपने जेब से नहीं देते वो भक्तों को जो वर है, वो भी भगवान से आता है। भगवान ने बोलते मयैव विहितान हि तान, मुझसे ही ये सैंक्शन किया जाता है। और कहीं कहीं प्रभु भगवान बोलते हैं कि अभिधि पूर्वकम, जो सारी चीज़ें वास्तव में सभी चीज़ें भगवान को अर्पित किया जाना चाहिए, परंतु व्यक्ति ये नहीं जानता है और सारे दूसरे दूसरे देवा देवियों को सारी चीज़ें अर्पित करता है। भगवान बोलते ये सारे अविधि पूर्वक, ये विधि नहीं हुआ, वो फिर भी मेरे पास आता है परंतु घूम फिर के फिर आता है, ये विधि नहीं है। यानी भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर बोलते हैं कि मुझे ही पूजा करना चाहिए। अहं सर्वयज्ञानां भक्ता च प्रभुरेव च, भगवान बोलते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का प्रभु है, तो मेरे को ही पूजा करना चाहिए, समस्त तपस्याओं का फल मुझे ही अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति साधारणतः तो हृदय के अंदर भोग वासना के कारण दूसरे दूसरे देवा देवियों के पास पूजा करते हैं और दूसरे दूसरे देवा देवियों का आराधना करते हैं, और जब वो थक जाते हैं और आराधना करते करते हैं, जैसे कर्मकांड कांड विभाग में बताया जाता है कि ये भी लोग नहीं समझ पाते कि जो कर्मकांड है ये अंत में धीरे धीरे ये प्रगति है, ये भगवत भगवान को जानने के लिए एक स्लो यानी प्रगति है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसका पिता माता ने उसे कुछ ऐसे कुछ रिसर्च खिलाते हैं, बच्चे को कुछ देते हैं, मैं ये दूंगा चॉकलेट देते हैं और कुछ खिलौना देते हैं, और धीरे धीरे स्कूल कॉलेज जाना शुरू करता है फिर धीरे धीरे। तो उसी प्रकार जो शास्त्र में जो कर्मकांड विभाग है वेद में, तो उसी प्रकार है व्यक्ति को, यानी स्वभाव तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में रत रहता है, तो इसलिए शास्त्रों ने उसको कुछ छूट दी जाती है कि इस प्रकार प्रथा अवलंबन करने से तुम इस प्रकार फल पाओगे, फिर इस प्रकार प्रथा अवलंबन करने से तुम इस प्रकार फल प्राप्त करोगे। धीरे धीरे जब व्यक्ति इस प्रकार कर्मकांड को अपनाता, तो जब फिर यज्ञ कर्म करता, विभिन्न प्रकार कर्मकांड करता, फिर स्वर्ग जाता, फिर स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाता फिर इस मर्त्यलोक में आता, फिर कर्मकांड करता है, फिर ये मर्त्यलोक में आकर फिर अपना दूसरा चैप्टर शुरू करता है, फिर स्वर्ग जाता है। तो इस प्रकार जब जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है, इस पर सुख भोगता, नरक जाता, स्वर्ग जाता, तो फिर व्यक्ति प्रश्न पूछता है, अरे इसका कोई अंत है कि नहीं, इस प्रकार दुखों का सुखों का कुछ अंत है कि नहीं, जहाँ पर ऐसा कुछ जगह है जहाँ पर हमें हमेशा सुख प्राप्त कर सकूँ। तो इस प्रकार बुद्धिमान होता, थोड़ा उसका चेतना विकसित होता और प्रश्न जिज्ञासा करता, पूछता है कि वास्तव में ऐसा कुछ जगह कहीं है जहाँ पर जाने से चिरंतन सुख प्राप्त होगा, तो फिर वो विष्णु का आराधना करने के लिए अग्रसर होता है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं, वो कर्मकांड में ही फंस जाते रह जाते हैं, जिंदगी भरी वो कर्मकांड में ही रह जाते हैं, इतना थोड़ी सी बुद्धि नहीं होता। खास करके जिन लोगों के पास इतना बुद्धि नहीं होती है, वो दूसरे दूसरे देवा देवियों को उपासना करते हैं। ये भी तीन प्रकार की उपासना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो देवा देवी का उपासना करते हैं ये तीन प्रकार के गुणों में भी करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति हमेशा हृदय में भोग करने की भावना रहने के कारण वो हमेशा देवा देवियों की उपासना करता है और विष्णु के उपासना नहीं करता, क्योंकि विष्णु सहसा वर प्रदान नहीं करते, विष्णु सोच विचार करके वर देते हैं। एक व्यक्ति ने एक बार क्या किया ना, एक कुछ सुख भोगने के लिए, कुछ इंद्र तृप्ति के साधन प्राप्त करने के लिए, वर प्राप्त करने के लिए, तो उसने एक देवी का पूजा करने लगा, देवी का मूर्ति लाकर उसको पूजा करने लगा। तो पूजा करते वक्त उन्होंने कुछ सॉरी पहले तो भगवान विष्णु का पूजा करने लगा, तो बहुत दिन भगवान की पूजा करने के बाद तो उन्होंने थक गया, और भगवान विष्णु तो सहसा इंद्र तृप्ति की वर नहीं देते हैं, तो थक जाने के कारण उन्होंने क्या किया, ऊपर भगवान का मूर्ति को हटाकर एक देवी का मूर्ति लगे पास में पूजा करने शुरू कर दिया। तो उसको क्या कहने उस दूसरे साइड कर दिया और खिड़की के पास फिर सॉरी खिड़की के पास कर दिया, मैंने एक चालना के पास कर दिया भगवान की मूर्ति को, और एक देवी का मूर्ति बीच में रखा और उसको पूजा करने लगा। फिर जब अगरबत्ती घुमाया तो सारे अगरबत्ती भगवान विष्णु के पास गया, नाक के ओर गया, तो उसने परेशान हो गया, अरे मैं देवी की पूजा करता हूँ परंतु ये अगरबत्ती ये सारे सामग्री का चीज़ें तो भगवान के कृष्ण के पास विष्णु के पास चल जाता। तो उसने क्या किया, न भगवान विष्णु के नथुनों में सारे रुई वगैरह कान में सारे जो रंध्र में सब भर दिया, जैसे ही भर दिया और पूजा करने लगा, तो तुरंत वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तो बोला कि हे प्रभु मैं तो आपको निंदा किया, अपराध किया आपके प्रति, मैंने तो आपको पूजा नहीं किया, मैं तो आपको हटा दिया, एक साइड कर दिया, और मैं तो देवी की पूजा करने लगा, तो आप मुझसे कैसे प्रसन्न हैं। बोले तुमने वास्तव में तुमने मेरे को बहुत प्रसन्न किया, क्योंकि तुमने मुझे एक व्यक्ति के रूप में माना, तुमने मुझे एक व्यक्ति के रूप में माना, तो इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम क्या वरद मांगते हो मांगो। तो इसी प्रकार व्यक्ति जब देवादेवियों को उपासना करता है तो सहसा क्या करता है, जब भगवान को उपासना करता है देखता है कि भगवान हठात सहसा देने वाले नहीं, वर देने वाले नहीं है। तो इसलिए शास्त्र में ये सारे विधान है कि इस देव का पूजा करने से ये फल मिलेगा, इनका पूजा करने वो फल मिलेगा। तो इस प्रकार व्यक्ति सहसा क्या करते हैं ना, सारे देवादेवियों को पूजा करने के लिए चले जाते हैं, उन्मुखी होते हैं। तो भगवान विष्णु के उपासक बहुत रेयर रहते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से सारा दुनिया में भक्त लोग प्रचार करते हैं। इसके कारण से आज के समय में विश्वभर में आप देखेंगे बहुत से भक्त हैं भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त हैं, दुनिया भर में इतना जोर से लोग प्रचार करते हैं, इतना जोर से वो लोग उत्साह के साथ भगवान की सेवा पूजा करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, देखते हैं हमारे, फिर भी लोग अज्ञान के कारण लोग निंदा करते हैं, क्योंकि उनका भोग प्रवृत्ति के कारण, अहंकार के कारण लोग निंदा करते हैं। तो इस प्रकार दैव और राक्षस लोग दुनिया में रहेंगे, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार हमारे जो इस श्लोक के या ये पुरंजन आज के जो श्लोक है, श्लोक के तात्पर्य जैसे हमें ये भी हमें पता चला, हमें ये शिक्षा लाभ किए कि हमेशा हमें एक उचित गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए और ये भक्ति योग को अपनाना चाहिए, और जो अष्टांग जो विभिन्न प्रकार योग के जो पंथा शास्त्र में बताया गया है वो सीढ़ी के माफी है, एक एक करके वो भक्ति योग में समाप्त होते हैं, और हमें सीधे भक्ति योग को अपनाना चाहिए जो लिफ्ट के माफी तुरंत हमारे गंतव्य स्थल को ले जाएगा। और वो सबसे सरल पंथा इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र और उस कीर्तन करना और हरे कृष्ण महामंत्र सुनना, भगवान के बारे में सुनना, यही हमारे जीवन में लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण।